ओम नमस्ते जी। अग्निहोत्र प्रवचन माला की 38वीं श्रव्य कर्णिका में आप सभी यज्ञ प्रेमी महानुभावों का स्वागत है। हम अग्न्याधान पर विचार कर रहे हैं। भूर भुवः स्वः से हम दीपक जलाते हैं, तत्पश्चात हवन कुंड में अग्नि का आधान करने का अगला मंत्र है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ये यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का पंचम मंत्र है। महर्षि दयानंद जी इसका इस प्रकार अर्थ करते हैं। ओम हे सर्व प्रकाशक ईश्वर, भूः आप नित्य प्रकाश स्वरूप हैं, भुवः दुख हर्ता हैं, स्वः सुखदाता हैं, भूम्ना महत्ता की दृष्टि से, द्यौः इव द्युलोक के समान तथा वरिम्ना विस्तार की दृष्टि से, पृथ्वी इव पृथ्वी के समान वर्तमान, देवयजनी हे दिव्य गुणों का मेल कराने वाली, पृथ्वी हे सबको विस्तृत कराने वाली परमात्मा देवी, परमात्म रूपी देवी, तस्याहते उस आपके और विस्तृत भूमि के पृष्ठे अवलंबन पर और पृष्ठभाग पर, अन्नादम श्रद्धा रूपी या हवि रूपी अन्न ग्रहण करने या खाने वाली, अग्निम संकल्प अग्नि को और भौतिक अग्नि को, अन्नाद्याय भक्षण योग्य अन्न अथवा आनंद के लिए आदधे स्थापित करता हूं। महानुभाव, ये महर्षि दयानंद सम्मत अर्थ आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश द्वारा किया हुआ है, महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों के अनुकूल है। हम एक और महानुभाव के अर्थ को भी आपको अवगत कराना चाहते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर तिलोकीनाथ जी क्षत्रिय ने इसी मंत्र का अर्थ करते हुए लिखा है, भूर भुवः स्वः अस्तित्वित्तुम अस्तित्व कारणत्वम उत्कर्षत्वम सच्चित आनंद ज्योतिवत ऐश्वर्य युक्त भूमिवत धारण आश्रय दातृत्व युक्त मैं देव सेवन समागम संगठन की भूमि आकाश की पृष्ठभूमि में सुपुष्टता कारक अन्न हेतु अन्न पाक अग्नि स्थापन करता हूं। इस मंत्र को बोल करके हमें कपूर से अथवा पतली पतली संविधाओं में अग्निधान करके अग्नि जला करके हवन कुंड में आधान करना होता है। कपूर नहीं मिलता तो कुछ लोग किसी संविधा में कपास की बाती बना करके लपेट करके उसमें उसको घी लगा करके बाती को जला करके अग्निधान करते हैं। चाहे किसी भी रूप में करिए, जैसा आपको सुविधा साधन उपलब्ध हो उस रूप में करिए, आपको ये क्रिया करनी होती है। महानुभाव, अब इस मंत्र के अंदर आए हुए शब्दों को लेकर के हम विशेष आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अन्नाद्याय भक्षण करने योग्य अन्न के लिए, भूमना विभु अर्थात अपनी व्याप्ति से, द्यौरिव आकाश में सूर्य प्रकाश से युक्त द्यौ के समान, वरिम्ना अच्छे अच्छे गुणों से, पृथ्वीव विस्तृत भूमि के तुल्य, ते इस प्रत्यक्ष तस्य अप्रत्यक्ष अर्थात अंतरिक्ष लोक में स्थित देवयजनी देव लोग जहां यज्ञ करते हैं उस पृथ्वी पृथ्वी के पृष्ठे ऊपर भूः भूमि भुवः अंतरिक्ष स्वः द्युलोक इन तीनों लोगों के अंतर्गत अन्नादम यवादि सब अन्नों को भक्षण करने वाले अग्निम प्रसिद्ध भौतिक अग्नि को आदधे आधान करता हूं। अब यहां पर श्रोताओं को यह समझ लेना चाहिए कि इस देश में या विश्व में अनेकों लोग यज्ञ करते हैं। इनमें विद्वान भी हैं और सामान्य पठित लोग भी हैं, कतिपय अति सामान्य बोध वाले भी हैं जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं है। हमारा यह लेख उन अति सामान्य लोगों के लिए है जो दैनिक यज्ञ तो करते हैं किंतु किसी भाव को मंत्र में निहित तात्पर्य को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। विद्वान तो मंत्र के तात्पर्य को समझ ही लेगा, परंतु ये व्याख्यान माला उन लोगों के लिए है जो लोग मंत्र तो बोल रहे हैं किंतु उसके तात्पर्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनको वैसा आह्लाद नहीं मिलता। एक तो है शब्दों का उच्चारण करना और हवन करना, इससे तो एक प्रसन्नता और पर्यावरण की शुद्धि का लाभ हमको मिलता ही है, लेकिन जब हम मंत्रगत अर्थों को गहराई से समझते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उस प्रयोजन के लिए यह प्रवचन माला है। तो यह मंत्र हमें प्रेरणा देने वाला ही नहीं अपितु असार संसार में कैसे रहना चाहिए इस तथ्य को भी बोध कराता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का द्वितीय मंत्र है, कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हमें इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत संपूर्ण जीवन पर्यंत जीने की इच्छा करनी चाहिए, न अन्यथा इतः अस्ति, यहां कर्म करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, इस प्रकार निष्काम यानी फलेच्छा रहित होकर कर्म यदि हम करें तो ये कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बने। प्रस्तुत अग्न्याधान का मंत्र इस रहस्य को सरल शब्दों में प्रशस्त करता है। कैसे, इसको इस रूप में समझने का प्रयत्न करें। इस मंत्र में अग्न्याधान करने से पूर्व ओम भूर भुवः स्वः कहकर प्रथम दीपक जलाया, फिर इस भूर भुवः स्वर द्यौर इव मंत्र द्वारा यज्ञ वेदी में अग्न्याधान किया, तो ओम भूर भुवः स्वः दो बार क्यों बोलते हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठना चाहिए। उठा भी हो तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। इस प्रकार के प्रश्न का समाधान हमें समझना होगा। प्रथम बार ओम भूर्भुवः स्वः कहकर हमें यह बोध प्राप्त हुआ कि ईश्वरीय अनुकंपा से मानव मात्र के कल्याणार्थ तीन लोकों में तीन अग्नियां हमें प्राप्त हैं। भू नाम पृथ्वी का है, पृथ्वी में अग्नि है। भुवः नाम अंतरिक्ष का है, अंतरिक्ष में विद्युत रूपी अग्नि है। और स्वः नाम है द्युलोक का, द्युलोक में आदित्य यानी सूर्य रूपी अग्नि है। ये तीनों ही अग्नियां अत्यंत उपयुक्त अग्नियां हैं। इनमें क्रम से एक की अपेक्षा अर्थात भू की अग्नि की अपेक्षा अंतरिक्ष में स्थित विद्युत अग्नि अधिक तेजस्वी है, विशाल एवं उपयोगी है। विद्युत की अपेक्षा द्युलोक स्थित आदित्य की अग्नि उससे भी अति तेजस्वी और उपकारक एवं उसकी विशालता है। पुनः भू भुवः स्वः का उच्चारण हमें यह बोध कराता है कि भू नाम है शरीर का, भुवः नाम है भूओ अवकल्कने, अवकल्कनम चिंतनम, चित स्वरूप चेतन का, आत्मा का। स्वः नाम है द्युलोक का, ब्रह्मरंध्र का। अब बोध प्राप्त कीजिए कि हमें भू शरीर के भरण पोषण में ही संलग्न नहीं रहना है, शरीर को भौतिक संसार को ही सब कुछ नहीं समझना है। संसार ही हमारे लिए कहीं साध्य बन जाए और जो आत्मा परमात्मा है उसके प्राप्ति का लक्ष्य ही बिल्कुल जीवन से छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। तो भुवः यानी आत्मचिंतन की ओर भी बढ़ना है। शरीर नश्वर है, नश्वर में ही लगे रहना अज्ञानता है, तो इस अज्ञान से ऊपर उठना है। भुवः चेतन आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना है। मात्र शरीर का कल्याण नहीं, आत्म कल्याण में भी प्रवृत्त होना है। शरीर साधन है आत्मबोध के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इस आत्म कल्याण के भाव को इतना समृद्ध करना है कि वह स्वः यानी ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर आनंद की प्राप्ति करे, मोक्ष का अधिकारी बने। इस प्रकार हम भू यानी शरीर से ऊपर उठे, भुवः आत्मबोध प्राप्त करें, स्वः आत्मबोध के द्वारा आनंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यह भाव हमें दूसरी बार अग्नि को हवन कुंड में रखते हुए उच्चारण से प्राप्त करना है। अब पुनः प्रश्न यदि हम कर लें कि यह आत्म कल्याण क्या संसार में रहकर प्राप्त किया जा सकता है, क्या हम मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, इसका समाधान भी मंत्र में दिया गया है। मंत्र में दो शब्द महत्वपूर्ण है, पृथ्वी इव वरिम्ना, पृथ्वी के समान श्रेष्ठ गुणों से, द्यौर इव भूमना, द्युलोक के समान विशाल। इन दोनों का चिंतन करें तो जीवन उन्नति का, आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मानव मात्र में पृथ्वी के समान धैर्य सहिष्णुता एवं सर्व कल्याण का भाव यदि आ जावे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त या सुगम हो जाता है। विवाह संस्कार में शिलारोहण की एक मुख्य विधि संपन्न की जाती है। कन्या का पग शिला पर रखकर वर कन्या की ओर देखकर ये मंत्र बोलता है, आरोहे मश्मानम अश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ट प्रतन्यतो वबाधस्व प्रतनायत। ये गृह सूत्र में पारस्कर गृह सूत्र में आया है। जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए तू इस शिला पर पैर रख, विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर। तात्पर्य यह है कि यह शिला पृथ्वी का रूप है। जैसे पृथ्वी पर पैर पटकते हैं, मैला करते हैं, इसको खोदते हैं, वह सब सबको सहन करती है, बदले में उत्तम जल अन्न फल फूल औषधि रत्न आदि प्रदान करती है। आज तुम मेरे परिवार में प्रवेश करोगी, पता नहीं परिवार का कोई सदस्य अपने स्वभाव से तुम्हें कटु वचन कहे आदि से पीड़ित करे या अन्य कोई किसी प्रकार का कष्ट दे, तो उसे तुमको सहन कर धैर्य के साथ दृढ़ता पूर्वक पृथ्वी के समान सबका ही कल्याण करते रहना है। दुर्भावना युक्त मन में कोई विचार मत लाना। गौतम बुद्ध महर्षि दयानंद आदि संतों के साथ मानवों ने कितने दुर्व्यवहार किए, किंतु उन संतों ने उन सबको सहन किया। महर्षि ने विष देने वाले को भी यह कहकर छुड़ा दिया कि मैं संसार को कैद करने नहीं, कैद से छुड़ाने आया हूं। विष देने वाले, घातक विष देने वाले जगन्नाथ को भगाने का मार्ग ही नहीं बताया, अपितु धन देकर भी उसकी सहायता की। तो हम यज्ञ तो करते हैं, किंतु कहां है हम में सहनशीलता, धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता और लोक कल्याण की कामना। यह भाव हमें अभ्यास से ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ करना नहीं छोड़ना है, दुर्भावनाओं का भी साथ साथ त्याग करना है। ये दुर्भावनाएं ही हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। आगे की चर्चा हम अगले श्रव्य कर्णिका में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम।